एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, इस ज्ञान गोष्ठी में मैं भी आपका साथी हूँ।
और मैं भी। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो शायद हम सबके मन में बसे एक बहुत ही गहरे, बहुत निजी सवाल से जुड़ी है, जेंडर।
हाँ,
किताब का नाम है जेंडर्स और इसकी लेखिका है कैथरीन बॉन स्टॉकटन।
ये विषय तो ऐसा है जिस पर आजकल मतलब हर तरफ बात हो रही है ना।
बिल्कुल।
हम अक्सर सोचते हैं, अच्छा जेंडर का मतलब है मर्द या औरत, सिंपल। लेकिन दुनिया भर में लोग अपनी पहचान, अपने अनुभव को लेकर बहुत बहुत अलग अलग तरह से सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं।
हाँ, और ये किताब हमें उन पुराने, शायद थोड़े तंग दायरों से बाहर निकालकर जेंडर की एक ज्यादा, कह सकते हैं, उलझी हुई लेकिन शायद ज्यादा सच्ची तस्वीर दिखाती है।
सही कहा, ये सिर्फ कोई किताबी बहस नहीं है।
नहीं,
ये हमारे रोज के जीने का, एक दूसरे को समझने का, हमारे रिश्तों का हिस्सा है। हम कितनी बार अनजाने में ही लोगों को खांचों में बांट देते हैं, है ना?
हाँ बिल्कुल। ये किताब उन आदतों पर सवाल उठाती है। तो चलिए इस किताब के विचारों की दुनिया में एक गोता लगाते हैं, देखते हैं स्टॉकटन हमें क्या सोचने पर मजबूर करती हैं।
हाँ, पर पहले लेखिका के बारे में थोड़ी बात कर लें। कैथरीन बॉन स्टॉकटन,
जरूर।
वो सिर्फ एक एकेडमिक ही नहीं है बल्कि यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा में अंग्रेजी की जानी मानी प्रोफेसर हैं, और पहले वहाँ इक्विटी एंड डाइवर्सिटी यानी समानता और विविधता विभाग की प्रमुख भी रह चुकी हैं।
अच्छा।
उनका काम क्वीयर थ्योरी, जेंडर और सेक्सुअलिटी और नस्ल पर जो गंभीर अध्ययन होते हैं उस क्षेत्र में बहुत अहम माना जाता है।
हाँ, और उनकी सोच में कुछ खास बातें हैं जो मुझे लगता है बताना जरूरी है। पहली, उनकी एक पिछली किताब थी द क्वीयर चाइल्ड।
हाँ, मैंने सुना है उसके बारे में।
उसमें उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प आइडिया दिया था, ग्रोइंग साइडवेज, मतलब तिरछा या अलग दिशा में बढ़ना।
तिरछा बढ़ना, इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब है कि जरूरी नहीं कि विकास या बढ़ना हमेशा एक सीधी तय पटरी पर ही हो, खासकर जब पहचान की बात आती है। जिंदगी, अप्रत्याशित मोड़ ले सकती है।
ये तो बहुत गहरी बात है। और दूसरी खासियत?
दूसरी है उनका इंटरसेक्शनल नजरिया,
इंटरसेक्शनल। हाँ,
मतलब वो जेंडर को कभी अकेले में नहीं देखती। वो हमेशा पूछती हैं, अच्छा इसका पैसे से क्या लेना देना है, वर्ग से, नस्ल से, पूंजीवाद से, क्या इन सबको हटाकर जेंडर समझ सकते हैं?
और उनका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं।
बिल्कुल। और इसी वजह से उनकी बातें सिर्फ किताबी नहीं लगती, वो समाज और राजनीति से सीधे जुड़ जाती हैं।
सही।
और तीसरी बात, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, वो है उनकी भाषा। वो मुश्किल से मुश्किल विचारों को भी बड़े सरल, यहाँ तक कि थोड़े काव्यात्मक अंदाज में समझा देती हैं।
अच्छा।
हाँ, ऐसा लगता है मानो कोई कहानी सुन रहे हों, पर बात बहुत गहरी होती है। शायद इसीलिए MIT प्रेस की जो एसेंशियल नॉलेज सीरीज है,
हाँ हाँ वो सीरीज तो बहुत अच्छी है,
उसके लिए ये किताब चुनी गई। उस सीरीज का मकसद ही है गंभीर विषयों को आम लोगों तक पहुंचाना।
तो ये तो हुई लेखिका की बात। अब आते हैं किताब पर, जेंडर्स। ये किताब आखिर कहना क्या चाहती है? अगर एक लाइन में कहें तो ये जेंडर के बारे में हमारी जो बनी बनाई सोच है ना,
हाँ,
उसको चुनौती देती है, उसको कुरेदती है और आखिरकार उसे विस्तार देती है। वो जो आम समझ है कि सेक्स तो बायोलॉजिकल होता है और जेंडर समाज बनाता है।
हाँ, वो वाली।
स्टॉकटन कहती है, रुको जरा, मामला इतना सीधा नहीं है भाई।
हाँ, वो जेंडर को किसी ठहरी हुई चीज, किसी संज्ञा की तरह नहीं देखती, बल्कि एक चलती हुई प्रक्रिया, एक क्रिया, कुछ ऐसा जो लगातार हो रहा है,
एक वर्ब की तरह।
हाँ बिल्कुल। किताब के नाम में ही देखिए, जेंडर्स, वो जो ब्रैकेट में एस लगा है,
हाँ, वो
याद दिलाता है कि जेंडर हमेशा एक से ज्यादा होता है, बहुवचन,
बिल्कुल,
प्लूरल।
और ये सिर्फ अलग अलग तरह के जेंडर की बात नहीं है, जैसे मर्द, औरत, नॉन बाइनरी वगैरह,
बल्कि ये किसी एक इंसान के अंदर भी जेंडर के कई रूप होने की बात है।
क्या ऐसा नहीं होता कि हम खुद ही कभी बहुत मर्दाना महसूस करते हैं, कभी बहुत जनाना, कभी कुछ और ही?
बिल्कुल होता है। स्टॉकटन कहती हैं कि यही जेंडर की असलियत है।
अच्छा,
तो किताब का एक सेंट्रल आइडिया है कन्फ्यूजन।
हाँ, ये शब्द थोड़ा अनोखा है।
कन्फ्यूजन,
ये अंग्रेजी के दो शब्दों को मिलाता है, कन्फ्यूजन यानी भ्रम या उलझन,
और फ्यूजन यानी मिलाप या संगम।
बिल्कुल। स्टॉकटन कहती हैं कि जेंडर एक ऐसी जगह है जहां बहुत सी अलग अलग चीजें, हमारे शरीर के अंग, हमारे कपड़े, हमारे विचार, समाज का इतिहास, सब आकर मिलते हैं, घुलते मिलते हैं।
और इस मिलाप में अक्सर विरोधाभास होता है, उलझन होती है।
हाँ।
लेकिन स्टॉकटन के लिए ये उलझन कोई गड़बड़ी नहीं बल्कि ये जेंडर की प्रकृति है, उसकी खासियत है।
तो किताब एक तरह से हमें एक सफर पर ले जाती है,
हाँ, एक यात्रा।
हम धीरे धीरे अपनी पुरानी धारणाओं पर सवाल उठाना सीखते हैं। क्या दुनिया वाकई सिर्फ मर्द और औरत में बटी है? क्या जेंडर का पैसे और नस्ल से कोई लेना देना नहीं? क्या इंसान और जानवर के बीच की रेखा इतनी पक्की है?
और इस यात्रा की मंजिल कोई नई साफ सुथरी परिभाषा नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं।
मंजिल है जेंडर की डार्क शिमर, यानी उसकी अंधेरी चमक को महसूस करना।
अंधेरी चमक? ये क्या चीज है?
ये वो कह सकते हैं जिंदा, थोड़ी रहस्यमयी, थोड़ी अनियंत्रित सी ऊर्जा है, जिसे हम जेंडर कहकर पकड़ने की कोशिश तो करते हैं पर वो हमेशा हमारी पकड़ से थोड़ी फिसल जाती है।
इंटरेस्टिंग। तो किताब कुछ बुनियादी सवाल उठाती है, जैसे जेंडर आखिर है क्या? पैसा और पूंजीवाद इसे कैसे बनाते बिगाड़ते हैं? जेंडर और नस्ल का रिश्ता क्या है, खासकर गुलामी और उपनिवेशवाद के काले इतिहास को देखते हुए?
और वो जिसे हम बायोलॉजिकल सेक्स कहते हैं, उसका जेंडर से क्या नाता है? क्या वो वाकई उतना अलग है जितना हम मानते आए हैं?
बहुत सारे सवाल हैं।
हाँ, चलिए अब अध्यायों में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। पहला अध्याय, जिसका शीर्षक कुछ ऐसा है, जेंडर इटसेल्फ, द एस एंड कॉन्फ्यूजन, यहीं से नींव पड़ती है।
ओके।
स्टॉकटन यहीं अपना वो एस वाला आइडिया लाती हैं, जेंडर एस। जैसा हमने कहा, ये सिर्फ दुनिया में कई तरह के जेंडर होने की बात नहीं,
बल्कि हर व्यक्ति के अंदर जेंडर की बहुलता की बात है।
हाँ, कोई भी इंसान सिर्फ एक जेंडर नहीं होता।
और यही वो कॉन्फ्यूजन यानी साथ मिलाप वाली उलझन का विचार रखती हैं। वो कहती हैं कि जेंडर को लेकर जो उलझन हमें महसूस होती है, या जब हम किसी का जेंडर तुरंत समझ नहीं पाते और बेचैन हो जाते हैं।
हाँ, होती है बेचैनी।
तो उसे नेगेटिव तौर पर नहीं देखना चाहिए, वो उलझन ही तो जेंडर की असलियत दिखा रही है।
अच्छा।
साथ ही यही वो तिरछा बढ़ने यानी साइडवेज ग्रोथ की बात करती हैं, कि जेंडर का विकास सीधा सपाट नहीं होता, वो अजीब अप्रत्याशित रास्तों से होता है।
ये सोचना ही कितना अलग है, हम तो हमेशा हर चीज को साफ साफ बांटने की कोशिश करते हैं। स्टॉकटन कह रही हैं कि शायद ये उलझन ही ज्ञान का स्रोत है, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम क्यों किसी को फौरन किसी खांचे में फिट करना चाहते हैं।
बिल्कुल। अब दूसरा अध्याय, मनी जेंडर बाय क्लास, ये इस बहस को आसमान से उतारकर जमीन पर लाता है। स्टॉकटन का तर्क बहुत सीधा है, आप किस जेंडर को कैसे जीते हैं ये बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी जेब में कितना पैसा है।
सही बात है।
जेंडर किसी के लिए खुद को सजाने संवारने का जरिया हो सकता है, तो किसी के लिए रोजी रोटी का संघर्ष।
हाँ, वो बताती हैं कि कैसे अमीरी से आप जेंडर के तयशुदा मानकों को पा सकते हैं, जैसे महंगी सर्जरी या डिजाइनर कपड़े, या फिर उन मानकों से अलग हटकर प्रयोग करने की हिम्मत जुटा सकते हैं। इसे वो फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ जेंडर कहती हैं।
जेंडर का वित्तीकरण?
हाँ, वो कैटलिन जेनर जैसी सेलिब्रिटी का उदाहरण देती हैं। उनकी कहानी को अक्सर ट्रांस लोगों के अनुभव का एकमात्र सच मान लिया जाता है।
हाँ, मीडिया में तो वही दिखता है ज्यादातर।
पर क्या एक आम गरीब ट्रांस व्यक्ति का संघर्ष वैसा ही होता है? शायद नहीं। ये दिखाता है कि खुद होने की आजादी भी कितनी आर्थिक हैसियत पर टिकी है।
बहुत जरूरी पॉइंट है ये। और इसी अध्याय में वो पश्चिमी समाज में मर्द और औरत के इस पक्के विभाजन के इतिहास को भी कुरेदती हैं।
हाँ, कि ये आया कहाँ से?
वो बताती हैं कि ये सिस्टम कैसे औद्योगिक क्रांति और उपनिवेशवाद के साथ मजबूत हुआ। ये कोई हमेशा से चली आ रही प्राकृतिक चीज नहीं है, बल्कि इसे इतिहास के खास दौर में बनाया गया और कह सकते हैं थोपा गया।
दुनिया भर में इतिहास में ऐसे ढेरों समाज और लोग रहे हैं जो इन दो खांचों से बाहर जीते थे।
बिल्कुल।
अगला अध्याय, रेस जेंडर बाय कलर, ये शायद इस किताब का सबसे जरूरी और झकझोरने वाला हिस्सा है। स्टॉकटन यहाँ तर्क देती हैं कि जेंडर की हमारी आज की समझ, खासकर मर्द और औरत की परिभाषाएं, वो गुलामी और उपनिवेशवाद की जमीन पर उगी हैं।
बाप रे।
और इसलिए जेंडर को नस्ल से अलग करके समझाई नहीं जा सकता। ऐतिहासिक रूप से आदर्श मर्द या औरत की छवि श्वेत यानी गोरे लोगों पर आधारित थी।
वो हॉटन स्पिलर्स जैसे अश्वेत नारीवादी चिंतकों का जिक्र करती हैं, जिन्होंने बताया कि कैसे गुलामी के दौर में अश्वेत लोगों से उनका जेंडर ही छीन लिया गया था। उन्हें मर्द या औरत का सामाजिक दर्जा नहीं दिया गया,
बल्कि उन्हें जानवर या संपत्ति की तरह देखा गया।
हाँ, स्टॉकटन कहती हैं कि ये ऐतिहासिक हिंसा आज भी अश्वेत लोगों के जेंडर अनुभवों को प्रभावित करती है। अक्सर श्वेत होना ही सामान्य मान लिया जाता है और बाकी सब अलग या कमतर।
ये सोचना कितना जरूरी है कि हमारी अपनी जेंडर की समझ कहीं ऐसी ही किसी ऐतिहासिक नाइंसाफी पर तो नहीं टिकी।
सही सवाल है।
और इसी अध्याय में वो बच्चों की बात करती हैं, अपने तिरछा बढ़ने वाले विचार को आगे बढ़ाते हुए।
बच्चों की कैसे?
वो कहती हैं कि बच्चे तो स्वाभाविक रूप से जेंडर को बहुत लचीले, बहुत रचनात्मक तरीके से जीते हैं। कपड़ों से खेलना, कल्पना की उड़ान भरना, एक ही पल में कई भूमिकाएं निभा लेना, ये सब उनके लिए सहज होता है।
हाँ, बच्चे तो करते हैं ऐसा।
लेकिन हम बड़े लोग अपनी मर्द औरत वाली सोच को लेकर इतने चिंतित रहते हैं कि अक्सर बच्चों की इस रचनात्मकता को दबा देते हैं। हम उन्हें गुलाबी और नीले रंगों में बांधने लगते हैं।
ये बात तो हम अपने आसपास रोज देखते हैं। चौथा अध्याय सेक्स जेंडर्स रिलेशन, ये उस आम समझ को तोड़ता है कि सेक्स तो पक्की बायोलॉजिकल चीज है और जेंडर ऊपर से ओढ़ी हुई।
हाँ, वो जो लाइन खींचते हैं हम।
स्टॉकटन कहती हैं कि नहीं, जिसे हम बायोलॉजिकल सेक्स कहते हैं वो भी उतना पक्का या स्थिर नहीं है। वो भी हमारे जेंडर संबंधी विचारों से प्रभावित होता है, यहाँ तक कि निर्मित भी होता है।
इसका सबसे बड़ा उदाहरण इंटरसेक्स लोग हैं, जिनके शरीर जन्म से ही मर्द या औरत के तयशुदा बायोलॉजिकल खांचों में फिट नहीं होते।
हाँ,
स्टॉकटन बताती हैं कि कैसे मेडिकल साइंस ने लंबे समय तक ऐसे बच्चों पर बिना उनकी सहमति के सर्जरी करके उन्हें किसी एक खांचे में फिट करने की कोशिश की है। ये क्या दिखाता है?
यही कि सेक्स भी अक्सर समाज के जेंडर नियमों के हिसाब से बनाया जाता है, वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है।
बिल्कुल।
इसी तरह ये अध्याय ट्रांसजेंडर अनुभवों को देखता है, पर उसे एक सीधी रेखा की तरह नहीं कि कोई मर्द से औरत बन गया या औरत से मर्द।
अच्छा।
स्टॉकटन कहती हैं कि असल जिंदगी में ये सफर कहीं ज्यादा घुमावदार, कहीं ज्यादा जटिल हो सकता है। लोग अपने जीवन में अलग अलग जेंडर अनुभवों के तथ्यों को साथ लेकर चल सकते हैं।
मतलब जरूरी नहीं कि कुछ पुराना पूरी तरह मिटाकर ही कुछ नया अपनाया जाए।
हाँ, ये पहचान का विस्तार हो सकता है, सिर्फ बदलाव नहीं।
और फिर आता है आखिरी हिस्सा, एनिमल डार्क शिमा, जेंडर सराउंड। यहाँ स्टॉकटन जेंडर की सीमाओं को और भी फैला देती हैं।
जानवरों तक?
हाँ, वो कहती हैं कि जेंडर सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है। सोचिए, हम जानवरों को, यहाँ तक कि बेजान चीजों को भी तो जेंडर दे देते हैं।
वो जहाज कितना मजबूत है, वो बिल्ली कितनी नखरीली है।
हाँ यार, ये तो करते हैं हम। और वो ये भी कहती हैं कि हमारा अपना जेंडर निभाना भी एक तरह से एनिमल ड्रैग जैसा है। हम जानवरों वाले गुण दिखाते हैं, जैसे शेर की तरह धाड़ना या मोर की तरह इतराना।
एनिमल ड्रैग, ये तो कमाल का फ्रेज है।
और यही वो डार्क शिमा यानी अंधेरी चमक का विचार फिर से लाती हैं।
हाँ।
वो कहती हैं कि शायद जेंडर हमारे सारे लेबल्स और परिभाषाओं से परे अस्तित्व की उसी गहरी, रहस्यमयी, ऊर्जावान चीज को पकड़ने की एक कोशिश है।
हम उसे नाम देने की कोशिश करते हैं, और वो हमेशा थोड़ी बच निकलती है। ये थोड़ा काव्यात्मक है, पर ये याद दिलाता है कि इंसान और उसकी पहचान किसी भी परिभाषा से बड़ी है।
ये हिस्सा इंटरसेक्शनैलिटी यानी विभिन्न पहचानों के अंतर संबंध पर फिर जोर देता है।
हाँ, कि सब कुछ जुड़ा हुआ है।
जेंडर की बहुलता को कौन कैसे अनुभव करता है, ये उसकी नस्ल, उसके वर्ग, उसकी आर्थिक स्थिति पर बहुत निर्भर करता है। कुछ समुदायों में शायद ज्यादा खुलापन हो, दूसरों में ज्यादा सख्ती।
भारत में ही सोचिए, अलग अलग इलाकों, धर्मों, जातियों, वर्गों में जेंडर को लेकर कितने अलग अलग नियम और कितनी अलग अलग आजादियां या बंदिशें हैं।
बिल्कुल।
पॉप कल्चर की भूमिका भी आती है इसमें। हमारी फिल्में, गाने, सोशल मीडिया, ये सब जेंडर की बहुलता को दिखाते भी हैं और कई बार उसे दबाते भी हैं।
पर दर्शक भी चालाक होते हैं ना?
हाँ, वो अक्सर कहानियों और किरदारों में अपने मतलब निकाल लेते हैं जो शायद बनाने वालों ने सोचे भी ना हो।
और आखिर में किताब इन सब बड़े बड़े विचारों को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ती है, जैसे लोगों के पसंदीदा सर्वनाम का सम्मान करना क्यों जरूरी है।
सही।
स्कूलों और दफ्तरों को कैसे ज्यादा समावेशी बनाया जा सकता है,
या फिर बाथरूम जैसी जगहों के डिजाइन पर दोबारा सोचने की जरूरत क्यों है।
ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है, ये हमारे जीने के तरीके को बदलने का न्योता है।
वाह, मतलब इस पूरी बातचीत से कुछ बड़े और जरूरी विचार निकल कर आते हैं ना?
हाँ बिल्कुल। सबसे पहला तो मेरे ख्याल से यही कि जेंडर एक नहीं, अनेक है, जेंडर्स, और ये बहुलता सिर्फ दुनिया में नहीं, हमारे अपने अंदर भी है।
सही।
दूसरा, कन्फ्यूजन यानी वो उलझन और मिलाप, ये कोई कमी नहीं बल्कि जेंडर की जान है, उसकी रचनात्मकता का स्रोत है। इससे घबराने के बजाय इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए।
तीसरा, इंटरसेक्शनैलिटी।
ये शब्द बार बार आ रहा है और ये जरूरी भी है। जेंडर को पैसे, वर्ग, नस्ल, जाति, धर्म, इन सब के लेंस से देखे बिना समझना अधूरा है, शायद गलत भी।
हाँ, ये सब चीजें आपस में गुद्धी हुई हैं। किसी दलित महिला का जेंडर अनुभव किसी सवर्ण पुरुष के अनुभव जैसा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता।
बिल्कुल। चौथा, सेक्स और जेंडर का वो जो पक्का विभाजन हम मानकर चलते हैं वो उतना पक्का है नहीं। जिसे हम बायोलॉजी कहते हैं वो भी समाज और संस्कृति से अछूती नहीं है।
और पांचवा, जेंडर कोई स्थिर पहचान नहीं बल्कि एक सतत चलने वाली क्रिया है, एक तरह का प्रदर्शन है। हम हर पल अपने हाव भाव, कपड़ों, बातों से जेंडर को कर रहे होते हैं, निभा रहे होते हैं।
छठा, वो साइडवेज ग्रोथ यानी तिरछा या अलग दिशा में बढ़ना। जरूरी नहीं कि विकास हमेशा सीधी रेखा में हो, जिंदगी के टेढ़े मेढ़े रास्ते भी उतने ही अहम और वैध हैं। ये विचार तो जिंदगी के हर पहलू पर लागू होता है।
बिल्कुल। और सातवां, वो डार्क शिमर वाला विचार कि हमारी सारी पहचानों और श्रेणियों के परे भी कुछ है, अस्तित्व की एक गहरी रहस्यमयी चमक जिसे हम पूरी तरह कभी पकड़ नहीं पाएंगे। यह हमें थोड़ा विनम्र बनाता है ना?
हाँ बिल्कुल। इन विचारों को अगर भारत के संदर्भ में सोचें तो समाज में जेंडर को लेकर जो इतनी बहसें, इतनी उलझनें दिखती हैं, शायद वो कन्फ्यूजन का ही सबूत है।
हो सकता है, शायद ये दिखाती हैं कि जेंडर वाकई कितना जटिल है।
और ये भी कि कैसे किसी की आर्थिक स्थिति तय करती है कि वो अपने जेंडर को कितनी आज़ादी से जी सकता है, या कैसे अलग अलग समुदायों में जेंडर की भूमिकाएं और उम्मीदें बिल्कुल अलग हो सकती हैं।
और बच्चों पर लड़का जैसा या लड़की जैसा बनने का दबाव, ये सब स्टॉकटन के विचारों से जुड़ता है। क्या हम उन्हें तिरछा बढ़ने की जगह दे रहे हैं? ये सोचने वाली बात है।
हाँ, किताब में कुछ ऐसी पंक्तियां या विचार हैं जो सच में दिमाग में अटक जाते हैं। सीधे उद्धरण तो नहीं, पर लेखिका के मूल विचारों का सार कह सकते हैं।
हाँ, जैसे पहला, हमें जेंडर को जेंडर नहीं, जेंडर्स की तरह सोचना चाहिए। वो ऐस याद दिलाता है कि जेंडर हमेशा बहुवचन है, एक कन्फ्यूजन। यह हमारे सोचने के तरीके को ही बदलने की मांग है।
नहीं समझ सकते, खुद होने की आज़ादी अक्सर एक विलासिता है। कितनी सीधी और चुभने वाली बात है।
हाँ, ये याद दिलाता है कि पहचान की लड़ाई और आर्थिक न्याय की लड़ाई अलग नहीं है।
तीसरा, आधुनिक मर्द और औरत की अवधारणाएं गुलामी और उपनिवेशवाद की नींव पर बनी थीं। जेंडर की बात बिना नस्ल और इतिहास के करना कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा बताना है। यह हमें अपनी जड़ों को, अपने इतिहास के स्याह पन्नों को देखने पर मजबूर करता है।
चौथा, शायद जिसे हम जेंडर कहते हैं वो अस्तित्व की डार्क शिमर का ही एक नाम है। जेंडर इस चमक को पकड़ने की कोशिश है, पर चमक हमेशा हमारी पकड़ से फिसल जाती है।
ये हमें पहचान की सीमाओं से परे झांकने को उकसाता है।
और पांचवा, तिरछा बढ़ना यानी उस दिशा में जाना जहां समाज कहता है तुम्हें नहीं जाना चाहिए।
ये उन रास्तों को सम्मान देता है जिन्हें असामान्य या गलत समझा जाता है, और शायद कहता है कि असली विकास वहीं होता है।
ये सारे विचार हमें अपनी बनी बनाई सोच पर, अपने पूर्वाग्रहों पर सवाल उठाने के लिए कहते हैं।
तो अब सवाल उठता है कि इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है, हम इन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं?
सबसे पहले तो शायद खुद को समझने में। अगर हम अपने अंदर जेंडर को लेकर विरोधाभास या उलझन महसूस करते हैं, तो ये समझना कि यह सामान्य है, ये कन्फ्यूजन है, खुद को किसी एक खांचे में फिट करने के दबाव से थोड़ी राहत मिल सकती है।
हाँ, और दूसरों के साथ व्यवहार में भी थोड़ी ज्यादा हमदर्दी रखना। कोई अगर अपने लिए खास सर्वनाम इस्तेमाल करना चाहता है तो उसका सम्मान करना। ये छोटी सी बात लगती है पर बहुत मायने रखती है।
बिल्कुल। किसी की शक्ल या कपड़ों से उसके जेंडर का अंदाजा न लगाना, ये सिर्फ पॉलिटिकली करेक्ट होने की बात नहीं, ये दूसरे इंसान की सच्चाई और जटिलता का सम्मान करना है।
और अगर हम माता पिता या शिक्षक हैं तो बच्चों को लेकर हमारी सोच बदल सकती है। उन्हें अपनी पहचान खोजने की ज्यादा आजादी देना, उन्हें गुलाबी और नीले रंग के डब्बों में बंद ना करना।
हाँ, क्लासरूम में जो जेंडर आधारित रूढ़ियाँ होती हैं उन पर सवाल उठाना, उन्हें सिखाना कि अलग होना ठीक है।
और बड़े स्तर पर देखें तो समाज और राजनीति को समझने का एक नया नज़रिया मिलता है। मीडिया या नेता कैसे जेंडर और नस्ल के स्टीरियोटाइप का इस्तेमाल करते हैं,
सरकारी नीतियाँ अलग अलग जेंडर के लोगों को कैसे प्रभावित करती हैं, ट्रांस समुदाय के प्रति नफरत, औरतों के प्रति हिंसा, नस्लवाद, जातिवाद और आर्थिक असमानता, क्या इन सब के बीच कोई रिश्ता है? स्टॉकटन का काम हमें इन रिश्तों को देखने में मदद करता है।
रचनात्मक कामों में भी ये सोच काम आ सकती है। लेखक ज्यादा गहरे और सच्चे किरदार गढ़ सकते हैं।
विज्ञापन बनाने वाले घिसे पिटे स्टीरियोटाइप से बच सकते हैं। ऑफिस में मैनेजर्स ज्यादा समावेशी और बेहतर माहौल बना सकते हैं। अगर हम इंसानों को सिर्फ दो खांचों में देखना बंद कर दें तो शायद हम ज्यादा बेहतर कहानियां कह पाएंगे, बेहतर काम कर पाएंगे।
तो अगर इस पूरी चर्चा से एक बड़ी सीख लेनी हो तो वो क्या होगी? मेरे लिए शायद ये कि जेंडर की जटिलता कोई बोझ नहीं बल्कि एक खजाना है, उसे गले लगाने में ही आजादी है। मर्द औरत का जो सख्त बंटवारा है वो कोई कुदरती कानून नहीं बल्कि इंसानी समाज की बनाई हुई एक कल्पना है जो अक्सर बहुतों के लिए तकलीफदेह साबित होती है।
मेरे लिए साइडवाइज ग्रोथ यानी तिरछा बढ़ने का विचार सबसे ज्यादा असरदार रहा। ये सिर्फ जेंडर की बात नहीं, जिंदगी जीने के तरीके की बात है कि जरूरी नहीं कि सफलता या विकास का एक ही सीधा रास्ता हो।
सही कहा।
और ये भी कि हमें अक्सर उन लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है जिनकी आवाजें दबा दी जाती हैं, चाहे वो बच्चे हों या हाशिए पे रखे गए समुदाय। उनकी नजरों से दुनिया कई बार ज्यादा साफ और सच्ची दिखती है।
सच कहा। ये किताब सिर्फ जानकारी नहीं देती, ये सोचने का एक नया औजार देती है। ये हमें अपनी और दूसरों की उलझनों को, जटिलताओं को स्वीकारने और शायद उनका जश्न मनाने के लिए भी प्रेरित करती है।
और ये एक सवाल छोड़ जाती है, अगर हम जेंडर के इन बने बनाए खांचों से खुद को वाकई आजाद कर लें तो इंसानी रिश्तों और समाज की कितनी नई संभावनाएं खुल सकती है, सोचने वाली बात है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एक्सेक्टर फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।